अध्याय 71 दाऊद का पाप और प्रायश्चित। ये अध्याय दूसरा शमूएल 11 आयत 12 पर आधारित है। बाइबल में पुरुषों की प्रशंसा के बारे में बहुत कम कहा गया है। जो कभी जीवित रहे हैं उन सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के गुणों का उल्लेख करने को भी कम स्थान दिया है। ये मौन उद्देश्य के बिना नहीं है और ना ही ये बिना सबक के है। सभी अच्छे गुण जो मनुष्य में हैं वे परमेश्वर की देन हैं। उनके अच्छे कार्य परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि जो भी वे करते हैं या जो भी वे हैं वो परमेश्वर की बदौलत है। इसलिए उसका गौरव केवल परमेश्वर को जाना चाहिए। इससे भी अधिक, जैसा बाइबल के इतिहास के सभी पाठ सिखाते हैं, मनुष्यों की प्रशंसा करना खतरनाक बात है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर पर अपनी निर्भरता की आवश्यकता को भूल जाता है और अपनी शक्ति में विश्वास करने लगता है तो वो निश्चय ही गिरेगा। मनुष्य उन शत्रुओं से लड़ रहा है जो उससे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं वरन राज्यों से, राजकीय सत्ताओं से, इस संसार के अंधकार के शासकों से, उच्च स्थान की दुष्टताओं से है। इफिसियों 6:12। संघर्ष को अपनी शक्ति से या अपने बलबूते पर कायम रखना हमारे लिए असंभव है, और जो चीज मन को परमेश्वर से दूर करती है, जो भी चीज हमें आत्मनिर्भरता और आत्म उन्नति की ओर ले जाती है, वो हमारी पराजय के लिए मार्ग तैयार करती हैं। ईश्वरीय शक्ति में विश्वास के लिए प्रोत्साहित करना और मानुषिक शक्ति में अविश्वास की बात को मन में बैठाना ही बाइबल का सार है। वो आत्मविश्वास और आत्म उत्कर्ष की ही भावना थी जिसने दाऊद के लिए पतन का मार्ग तैयार किया। चापलूसी और भोग विलास और आधिपत्य के जटिल प्रलोभनों ने निश्चय ही उसे प्रभावित किया। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों ने भी दुष्प्रभाव डाला। पूर्वी शासकों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसार प्रजा के असहनीय अपराधों को राजा द्वारा दंडमुक्त छोड़ दिया जाता था। प्रजा की तरह राजा भी उसी आत्मसंयम का अभ्यास करने के लिए बाध्य नहीं था। इस सब ने दाऊद का पाप की अति पापमयता के आभास को कम कर दिया, और दीनतापूर्वक यहोवा के सामर्थ्य पर निर्भर करने के बजाय वो अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करने लगा। जितनी शीघ्रता से शैतान प्राणी को शक्ति के एकमात्र स्रोत अर्थात परमेश्वर से अलग कर देता है, वो मनुष्य के शारीरिक स्वभाव की अपवित्र अभिलाषाओं को उत्तेजित करता है। शत्रु का काम अप्रत्याशित नहीं होता है, वो प्रारंभ में अकस्मात और आश्चर्यजनक नहीं होता, वो सिद्धांतों के गढ़ों को गुप्त रूप से खोखला कर रहा होता है। ये कार्य छोटी छोटी बातों से आरंभ होता है। परमेश्वर के प्रति सच्चा रहने और उस पर पूर्णतया निर्भर करने की उपेक्षा और संसार के रीति रिवाजों का अनुकरण करने का आचरण। अम्मोनियों के साथ युद्ध की समाप्ति से पूर्व दाऊद ने योआब की सेना का संचालन छोड़कर यरूशलेम को वापसी की। अरामियों ने पहले ही इसराइल के सम्मुख समर्पण कर दिया था और अम्मोनियों की संपूर्ण पराजय निश्चित प्रतीत हो रही थी। दाऊद अपनी विजय के फल और अपने विवेकपूर्ण और सुयोग्य शासन के सम्मानों से घिरा हुआ था। इस घड़ी जब वो असुरक्षित और विश्राम की स्थिति में था, प्रलोभनकर्ता ने उसके मन को व्यस्त करने का अवसर प्राप्त किया। परमेश्वर ने दाऊद के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखा था और उस पर इतनी कृपा दृष्टि दिखाई थी कि ये सच्चाई उसके चरित्र को बेदाग संरक्षित रखने के लिए ठोस सबब होना चाहिए थे। लेकिन जब आत्म सुरक्षा और सहजता में उसने परमेश्वर पर अपनी पकड़ को ढीला छोड़ा, दाऊद ने शैतान को समर्पण कर दिया और अपनी आत्मा पर दोष का कलंक लगने दिया। उसने, जो राज्य का स्वर्ग द्वारा नियुक्त अगुआ था, जिसे परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को लागू करने को चुना था, स्वयं उसके सिद्धांतों को पैरों तले रौंद डाला। जिसे पाप करने वाले के लिए भय का स्रोत होना चाहिए था, उसने अपने ही कृत्य द्वारा उनके हाथों को बलवंत किया। अपने प्रारंभिक जीवन के खतरों के बीच दाऊद सचेतन अखंडता के साथ अपनी स्थिति को परमेश्वर के भरोसे छोड़ सकता था। उसके पैरों से बिछाए गए असंख्य जालों से बचने के लिए परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया था, लेकिन अब दोषी और पश्चातापहीन होकर उसने स्वर्ग से सहायता या मार्गदर्शन की अपेक्षा नहीं की, लेकिन पाप ने उसे जिन खतरों में धकेल दिया था उनसे बाहर निकलने का वो स्वयं प्रयास कर रहा था। बतशेबा, जिसकी घातक सुंदरता राजा के लिए एक जाल प्रमाणित हुई, हित्ती उरिया की पत्नी थी। उरिया दाऊद का सबसे साहसी और निष्ठावान अधिकारी था। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि अपराध के ज्ञात होने पर क्या परिणाम होगा। परमेश्वर की व्यवस्था व्यभिचारी को मृत्युदंड का भागी ठहराती थी, और वो स्वाभिमानी योद्धा जिसके साथ इतना अनर्थ हुआ था, राजा के प्राण लेकर या राज्य को विद्रोह के लिए उत्तेजित करके अपना प्रतिशोध पूरा कर सकता था। अपने दोष को छिपाने के लिए दाऊद का प्रत्येक प्रयास व्यर्थ ठहरा। उसने स्वयं को शैतान के अधिकार में दे दिया था। वो खतरों से घिरा था। मृत्यु से अधिक कड़वा अपमान उसके सामने था। बच के निकलने का एक ही उपाय सूझ रहा था, और अपने उतावलेपन में उसने अति शीघ्रता से व्यभिचार में हत्या के पाप को भी संलग्न कर दिया। वो जिसने शाऊल के विनाश को दिशा दी थी, वो दाऊद को भी विनाश की ओर ले जाना चाहता था। यद्यपि प्रलोभन भिन्न थे, लेकिन दोनों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कराने की दृष्टि से समान थे। दाऊद का तर्क था कि उरिया यदि शत्रु के हाथों मारा जाए तो उसकी मृत्यु का दोष राजा पर नहीं लगेगा, और बतशेबा दाऊद की पत्नी बनने के लिए स्वतंत्र होगी। संदेह उस पर नहीं किया जाएगा और उसका राजसी सम्मान बना रहेगा। उरिया को अपनी ही मृत्यु के आदेश का वहनकर्ता बनाया गया। उसी के हाथों योआब को एक पत्र भेजा गया जिसमें राजा की ये आज्ञा थी, उरिया को सबसे घमासान युद्ध की अग्रिम श्रेणी में रखना और उसे वहां छोड़कर लौट आना ताकि वो घायल होकर मर जाए। योआब, जिस पर एक अकारण हत्या का आरोप था, राजा के निर्देश का पालन करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, और उरिया अम्मोन के पुत्रों की तलवार से काट डाला गया। इसके पहले शासक के तौर पर दाऊद का इतिहास ऐसा रहा है जिसकी बराबरी बहुत कम सम्राटों ने की है। दूसरा शमूएल 8:15 में लिखा है कि दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। उसकी अखंडता ने प्रजा के विश्वास और स्वामी भक्ति को जीत लिया। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गया और दुष्ट शैतान को समर्पित हो गया, वो उस समय के लिए शैतान का कर्मक बन गया। लेकिन फिर भी उसके पास परमेश्वर द्वारा दिया गया पद और अधिकार था, और इसके कारण उसने लोगों की आज्ञाकारिता का दावा किया, और इससे उसकी आज्ञा का पालन करने वालों की आत्मा संकट में पड़ गई। योआब ने, जिसने परमेश्वर के बजाय राजा की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, क्योंकि उसे राजा ने आदेश दिया था। दाऊद को परमेश्वर ने अधिकार प्रदान किया था, लेकिन उसका अभ्यास ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल होना था। जब उसने वो आज्ञा दी जो परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत थी, उसका पालन करना पाप बन गया। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, रोमियो 13:1। लेकिन हमें उनका पालन परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत नहीं करना है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखते हुए उस सिद्धांत को आगे रखता है जिससे हमें संचालित होना है। वो कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। 1 कुरिन्थियों 11:1। दाऊद के आदेश के कार्यान्वयन का विवरण उसे भेज दिया, लेकिन नपे तुले शब्दों में, जिससे कि ना ता योआब फंसे और ना ही राजा। योआब ने दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा को कोध भड़क उठे तो तू यों कहना, तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। राजा ने उत्तर दिया, योआब से यों कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बांध।
बतशेबा ने अपने पति के लिए परंपरा के अनुसार विलाप किया, और विलाप के दिन बीत जाने पर दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया, और वो उसकी पत्नी हो गई। वो जिसकी संवेदनशील अंतरात्मा और आत्मसम्मान का आभास उसके प्राण संकट होने के बावजूद भी उसे परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं देते थे, वो इतना गिर गया कि उसने अपने सबसे ईमानदार व शूरवीर योद्धा के साथ अनर्थ किया और उसे मरवा दिया, और फिर भी
अपने पाप के प्रतिफल को बिना बाधा के आनंद लेने की आशा की। हाय, वो दमकता हुआ सोना फीका कैसे पड़ गया, वो उत्तम सोना बदल कैसे गया। प्रारंभ से ही शैतान ने मनुष्य को आज्ञा उल्लंघन से मिलने वाले लाभ को चित्रांकित किया था। इसी तरह उसने स्वर्ग दूतों को भरमाया, इसी तरह उसने आदम और हवा को पाप के लिए ललचाया, और इसी तरह वो जनसाधारण को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से परे ले जा रहा है। आज्ञा उल्लंघन का मार्ग आकर्षक प्रतीत कराया जाता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14 आयत 12। धन्य है वे जो इस रास्ते चलकर ये जान लेते हैं कि पाप का फल कितना कड़वा है और उससे शीघ्र ही मुंह मोड़ लेते हैं। दयावान परमेश्वर ने दाऊद को पाप के कपटपूर्ण प्रतिफल द्वारा संपूर्ण विनाश की ओर आकर्षित होने के लिए नहीं छोड़ा। इसराइल की खातिर परमेश्वर का हस्तक्षेप अनिवार्य था। समय बीतने पर बतशेबा के प्रति दाऊद का पाप ज्ञात हो गया और संदेह उत्पन्न हुआ कि उसने उरिया की हत्या का षड्यंत्र रचा था। परमेश्वर का अपमान हुआ था। उसने दाऊद पर कृपा दृष्टि की थी और उसे ऊंचा उठाया था, और दाऊद के पाप ने परमेश्वर के चरित्र का गलत प्रतिनिधित्व किया और उसके नाम की निंदा की। इससे इसराइल में पवित्रता के स्तर को गिरने में, कईयों के मन में पाप से घृणा को कम करने में बढ़ावा मिला, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और उससे प्रीति नहीं रखते, वे आज्ञा उल्लंघन करने में और भी निर्भीक हो गए। भविष्यवक्ता नातान को दाऊद के लिए फटकार का संदेश लेकर भेजा गया। संदेश भयानक रूप से कठोर था। ऐसी फटकार कुछ ही शासकों को फटकार लगाने वाले के प्राणों को दांव पर लगाकर दी जा सकती थी। नातान ने बिना हिचकिचाहट के पवित्र दंडादेश कह डाला, लेकिन स्वर्ग में प्रेरित बुद्धिमत्ता के साथ, ताकि वो राजा की सहानुभूति को पा सकें, उसकी अंतरात्मा के जागृत कर सके और उसी के होठों से उसकी मृत्यु का दंडादेश कहलवा सके। दाऊद को लोगों के अधिकारों का अभिभावक मानकर उसने विनती करते हुए अत्याचार और अनर्थ की कहानी दोहराई, जिसका समाधान आवश्यक था। नातान ने कहा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वो उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी हुई थी। वो उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद को कोध भड़क उठा और उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। दूसरा शमूएल 12 आयत 5-6। नातान ने अपनी आंखें दाऊद पर स्थिर की और फिर अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर गंभीरता से घोषणा की, तू ही वो मनुष्य है, और वो बोलता गया, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि से बुरा है? अपराधी, जैसा कि दाऊद ने किया, मनुष्य से अपने अपराध को छिपाने का प्रयास करते हैं, वे मनुष्य की दृष्टि या ज्ञान से उस पाप को हमेशा के लिए विलुप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानियों 4 आयत 13। मत्ती 10 आयत 26 में लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। नातान ने घोषणा की, इसराइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इसराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। तूने तो ये काम छुपकर किया, पर मैं ये काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। भविष्यवक्ता की फटकार ने दाऊद के हृदय को छुआ, उसका अंतर्मन जागृत हुआ, उसका पाप अपनी संपूर्ण घोरता में प्रकट हुआ, उसकी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख प्रायश्चित में झुक गई। कांपते हुए होठों से उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरों के प्रति किया गया अनर्थ चोट खाए हुए की ओर से लौटकर परमेश्वर के पास जाता है। दाऊद ने बतशेबा और उरिया के प्रति घोर अपराध किया था, जिसकी चुभन वो महसूस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध उसका पाप और भी बड़ा था। हालांकि इसराइल में परमेश्वर के अभिषिक्त पर मृत्यु की दंडाज्ञा का क्रियान्वयन करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दाऊद ये सोचकर कौंप रहा था कि कहीं उसके दोषी और अक्षम्य होने के कारण परमेश्वर की तत्पर दंडाज्ञा द्वारा वो काट डाला न जाए। लेकिन उसे भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेजा गया, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। फिर भी न्याय को कायम रखा जाना था। मृत्युदंड दाऊद से उसके पाप से उत्पन्न संतान पर डाल दिया गया। इस प्रकार राजा को प्रायश्चित का अवसर प्रदान किया गया, जबकि दंड के तौर पर उसके नवजात शिशु की मृत्यु का दुख उसकी अपनी मृत्यु पर होने वाले दुख से कहीं अधिक दुखदायी था। भविष्यवक्ता ने कहा, तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। जब उसका बच्चा रोगग्रस्त हो गया, दाऊद ने उपवास करके और दीन होकर उसके प्राणों की भीख मांगी। उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपना मुकुट एक तरफ रख दिया और रात रात भर भूमि पर लेटा रहा। अत्यंत दुखी होकर अपने दोष के लिए कष्ट भुगत रहे निर्दोष संतान के पक्ष में मध्यस्थता करता रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास आए, परंतु उसने उठना न चाहा। अक्सर जब व्यक्तियों या नगरों पर दंडाज्ञा की घोषणा की जाती थी, प्रायश्चित और समर्पण द्वारा उसे मोड़ दिया जाता था, और वो सदा दयावान क्षमा करने में तत्पर शांति दूतों को भेज देता था। इस विचार से प्रोत्साहित होकर दाऊद तब तक विनती करता रहा जब तक बच्चे को जीवित रखा गया। ये जानकर कि वो मर चुका था, उसने चुपचाप परमेश्वर के आदेश के आगे समर्पण कर दिया। जिस दंडाज्ञा को उसने न्यायसंगत ठहराया था, उसका प्रथम वार हो चुका था, लेकिन परमेश्वर की करुणा में विश्वास रखते हुए दाऊद बिना सांत्वना के न था। दाऊद के पतन के इतिहास को पढ़ने वाले कई पाठक पूछते हैं, इस जीवन के इतिहास को सार्वजनिक क्यों बनाया गया? परमेश्वर ने स्वर्ग द्वारा इतने अधिक सम्मानित के जीवन में इस अंधकारमय अंश को संसार के सामने खोलना क्यों उचित समझा? भविष्यद्वक्ता ने दाऊद को दी गई फटकार में उसके पाप से संबंधित ये घोषणा की, तूने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों के प्रारंभ से अंत तक नास्तिकों ने दाऊद के चरित्र की ओर संकेत किया है, जिस पर ये गहरा कलंक है, और उपहास करते हुए कहा है, ये है वो पुरुष जो परमेश्वर के मन के अनुसार है। इस प्रकार धर्म को निंदनीय ठहराया गया, परमेश्वर और उसके वचन का तिरस्कार हुआ है, आत्माएं अविश्वास से कठोर हो गई हैं और कई धार्मिकता की आड़ में पाप में निर्भीक हो गए हैं। लेकिन दाऊद का इतिहास पाप का समर्थन नहीं करता। उसे परमेश्वर के मन के अनुसार तब कहा गया जब वो परमेश्वर की सम्मति में चल रहा था। जब उसने पाप किया, ये बात उसके लिए सत्य न रही, जब तक कि वो प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर के पास न लौट गया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, जो काम दाऊद ने किया था वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। दूसरा शमूएल 11:27। और परमेश्वर ने दाऊद को भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना। यद्यपि दाऊद ने अपने पाप का प्रायश्चित किया और उसे क्षमादान मिला और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया, उसने अपने ही द्वारा बोए हुए बीज की अनिष्टकर फसल को काटा। उस पर और उसके घराने को दी गई दंडाज्ञा परमेश्वर की पाप के प्रति घृणा की पुष्टि करती है। इससे पहले परमेश्वर की सुरक्षा ने दाऊद को उसके शत्रुओं के षड्यंत्रों के प्रति संरक्षित रखा था और शाऊल पर नियंत्रण रखने के लिए इसका प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास किया था, लेकिन दाऊद की अवज्ञा ने परमेश्वर के साथ उसके संबंध को बदल दिया। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में अधर्म को सहमति नहीं दे सकता था। वो दाऊद को उसके पापों के परिणामों से बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, जैसे कि उसने उसे शाऊल की शत्रुता से बचाया था। स्वयं दाऊद में बहुत परिवर्तन हुआ। अपने पाप और उसके व्यापक परिणामों के बोध से उसका मन टूट सा गया था। वो अपनी प्रजा की दृष्टि में गिर गया था। उसका प्रभाव कम हो गया था। अब तक उसकी समृद्धि का श्रेय परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उसकी न्यायपरायण आज्ञाकारिता को दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि उसकी प्रजा को उसके पाप की जानकारी थी, वे खुलकर पाप करने लगे। उसके अपने ही घराने में उसका अधिकार, अपने पुत्रों से आज्ञाकारिता और आदर का दावा शक्तिहीन हो गया। जब उसे पाप की निंदा करनी होती थी तो उसके अपने अपराध का बोध उसे चुप रहने के लिए विवश कर देता। अपने ही घर में न्याय को कार्यान्वित करने के लिए वो असमर्थ हो गया। उसके बुरे उदाहरण का प्रभाव उसके पुत्रों पर पड़ा और परमेश्वर ने परिणाम को बाधित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। उसने परिस्थितियों को प्राकृतिक रूप से घटित होने दिया और इस प्रकार दाऊद को ताड़ा गया। पतन के पश्चात एक वर्ष तक दाऊद अवास्तविक रूप से सुरक्षित रहा। परमेश्वर की अप्रसन्नता का कोई बाहरी प्रमाण नहीं था, लेकिन पवित्र दंडाज्ञा उसके सर पर लटक रही थी। शीघ्र और निश्चय ही न्याय और प्रतिशोध का दिन निकट आ रहा था, जिसे कोई भी प्रायश्चित टाल नहीं सकता था, और उस यातना और अपमान ने उसके संपूर्ण सांसारिक जीवन को अंधकारमय बना दिया। दाऊद के उदाहरण की ओर संकेत करके, जो अपने निज पापों के दोष को कम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बाइबल के उल्लेखों से सीखना चाहिए कि आज्ञा उल्लंघन का मार्ग दुष्कर है। हालांकि दाऊद की तरह उन्हें बुराई के रास्ते से मुंह फिरा लेना चाहिए, पाप के परिणाम इस जीवन में भी सहन करने के लिए कठिन और कटु होंगे। परमेश्वर चाहता था कि दाऊद के पतन का इतिहास उन्हें इस बात की चेतावनी दे कि जिन्हें उसने इतना आशीषित किया है और जिन पर उसकी कृपा दृष्टि रही है, उन्हें भी सुरक्षित मान प्रार्थना और सजग रहने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार इसने उन्हें जो दीनता में परमेश्वर द्वारा सिखाए जाने के लिए तैयार किए गए सबक को सीखना चाहते थे, समझाया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हजारों ने प्रलोभनकर्ता से स्वयं के ऊपर संकट को समझने में सहायता की है। परमेश्वर द्वारा इतने सम्मानित दाऊद के पतन ने उनमें आत्म अविश्वास को जागृत किया। उन्हें आभास हुआ कि केवल परमेश्वर उन्हें उनके विश्वास के द्वारा अपनी सामर्थ्य से बचाए रख सकता था। वो जानकर कि उनकी शक्ति और सामर्थ्य उसी में निहित थी, तो शैतान के क्षेत्र में पहला कदम रखने से भी डरे हैं। दाऊद के विरुद्ध दंडादेश की घोषणा से पहले ही वो आज्ञा उल्लंघन के फल को भुगतना आरंभ कर चुका था। उसकी अंतरात्मा शांत नहीं थी। वो आत्मिक वेदना जो उसने उस समय सहन की, वो 32वें भजन में दिखाई गई है। वो कहता है,
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। भजन संहिता 32 आयत 1-4। और 51वां भजन दाऊद के प्रायश्चित की अभिव्यक्ति है। इस समय उसके पास परमेश्वर की ओर से फटकार का संदेश आया। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं
और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से न हटा और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म की जय जयकार करने पाऊंगा। भजन संहिता 51 आयत 1-14। इस प्रकार अपनी प्रजा की सार्वजनिक सभाओं में गाए जाने वाले गीत में दरबार अर्थात याजकों, न्यायियों, प्रधानों और योद्धाओं की उपस्थिति में और जो आखिरी पीढ़ी तक उसके पतन के ज्ञान को संरक्षित रखता, राजा ने अपने पाप अपने प्रायश्चित और परमेश्वर की करुणा के द्वारा क्षमा में उसकी आशा का वर्णन किया। अपने दोष को छुपाने का प्रयास करने के बजाय उसकी इच्छा थी कि उसके पतन के इतिहास द्वारा दूसरों को निर्देशित किया जाए। दाऊद का प्रायश्चित गहरा व वास्तविक था। उसके अपराध को छुपाने या घटाने का कोई प्रयास नहीं था। उसकी प्रार्थना दंडाज्ञा की धमकी से बचने की इच्छा से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रति अपने पाप की घोरता को देखा। उसने अपनी आत्मा के अपवित्र होने को देखा और उसने अपने पाप से घृणा की। उसने केवल क्षमादान के लिए भी प्रार्थना नहीं की, वरन हृदय की पवित्रता के लिए भी विनती की। हताश होकर दाऊद ने संघर्ष के आगे समर्पण नहीं किया। पश्चतापी पापियों के प्रति परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में उसने अपनी क्षमा और स्वीकृति के प्रमाण को देखा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51 आयत 16-17। हालांकि दाऊद का पतन हुआ था, परमेश्वर ने उसे उठाया। वह अब पतन से पहले की तुलना में परमेश्वर के साथ और अपने सहवासियों के साथ और अधिक संपूर्ण रूप से सामंजस्य में था। अपने छुटकारे की प्रसन्नता में उसने गाया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 32 आयत 5-7। कई लोग इसलिए कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर द्वारा शाऊल को उस अपराध के लिए जो उनकी दृष्टि में कम निंदनीय था अस्वीकार किए जाने के बाद दाऊद के प्राणदान को वे परमेश्वर का अन्याय कहते हैं। लेकिन दाऊद ने स्वयं को दीन किया और अपने पापों का अंगीकार किया, जबकि शाऊल ने निंदा का तिरस्कार किया और अपने हृदय को कठोर कर लिया और प्रायश्चित नहीं किया। दाऊद के इतिहास का ये अंश पश्चतापी पापी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानवता के संघर्षों और प्रलोभनों का और प्रभु यीशु मसीह में हमारे विश्वास और परमेश्वर के प्रति वास्तविक प्रायश्चित का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। सभी युगों के आरंभ से अंत तक ये उन प्राणियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत प्रमाणित हुआ है जो पाप में गिरकर अपने अपराध के बोझ से दबे संघर्ष कर रहे थे। परमेश्वर की हजारों संतानें जो पाप में पड़ गईं, लेकिन जब निराश हो जाने के समय उन्होंने दाऊद के सच्चे प्रायश्चित और पाप अंगीकार का स्मरण किया, तो वे परमेश्वर द्वारा स्वीकार कर लिए गए, इसके बावजूद कि उनकी अवज्ञा के कारण उसने कष्ट उठाया, क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित करने और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने का प्रयास करने का साहस किया। जो कोई भी परमेश्वर की फटकार सुनकर अपने पाप का अंगीकार और प्रायश्चित करके आत्मा को दीन करता है, जैसे कि दाऊद ने किया, उसके लिए निश्चय ही आशा है। जो विश्वास में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करता है वो क्षमा प्राप्त करेगा। परमेश्वर कभी भी एकमात्र सच्चे पश्चतापी प्राणी को नहीं धिक्कारेगा। उसने प्रतिज्ञा की है, यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आए और मुझसे मेल करना चाहे तो वह चला आए और मुझसे मेल कर ले। यशाया 27 आयत 5। दुष्ट अपना चाल चलन छोड़ दें, अधर्मी व्यक्ति अपने विचार, और वे यहोवा की ओर फिरें, वह उन पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। यशायाह 55:7।